नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9R3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। जेम्स सेरा की पुस्तक डिसाइफरिंग डेटा आर्किटेक्चर्स आधुनिक डेटा प्लेटफॉर्म चुनने की व्यावहारिक समस्या पर केंद्रित मार्गदर्शिका है। यह किसी एक उत्पाद या फैशन परक तकनीकी शब्द का समर्थन नहीं करती, बल्कि मॉडर्न डेटा वेयरहाउस, डेटा फैब्रिक, डेटा लेक हाउस और डेटा मेश के बीच निर्णय लेने का ढांचा देती है। पुस्तक का विषय डेटा इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, गवर्नमेंस और संगठनात्मक संचालन के संगम पर स्थित है। सेरा का मूल उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि समान दिखने वाले आर्किटेक्चर वास्तव में डेटा के स्थान, स्वामित्व, एकीकरण और उपयोग के बारे में अलग धारणाओं पर बने हैं। वे डेटा की यात्रा को इंगेस्ट, स्टोर, ट्रांसफॉर्म, मॉडल और विजुलाइज जैसे चरणों में देखते हैं, जिससे विकल्पों की तुलना केवल उपकरणों के आधार पर नहीं होती। पुस्तक विशेष रूप से उन संगठनों के लिए उपयोगी है जो AI, मशीन लर्निंग, रिपोर्टिंग और रियल टाइम विश्लेषण की बढ़ती जरूरतों के बीच अपनी पुरानी डेटा व्यवस्था को आधुनिक बनाना चाहते हैं। इसका दृष्टिकोण तकनीकी चुनाव को व्यावसायिक लक्ष्य और संगठन की वास्तविक क्षमता से जोड़ता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, 5 डेटा मूवमेंट चरणों से आर्किटेक्चर तुलना का साझा आधार। पुस्तक की एक केंद्रीय उपयोगिता यह है कि सेरा अलग अलग आर्किटेक्चर को अस्पष्ट लेबलों के रूप में नहीं छोड़ते। वे हर व्यवस्था को डेटा मूवमेंट के 5 चरणों, इंगेस्ट, स्टोर, ट्रांसफॉर्म, मॉडल और विजुअलाइज के आधार पर देखने का सुझाव देते हैं। इंगेस्ट में स्रोत प्रणालियों से डेटा आने का तरीका महत्वपूर्ण है, जैसे बैच प्रतिलिपि, स्ट्रीमिंग या API आधारित संग्रह। स्टोर चरण यह प्रश्न उठाता है कि कच्चा, अर्ध संरचित और क्यूरेटेड डेटा कहाँ रखा जाएगा। ट्रांसफॉर्म चरण में गुणवत्ता, मानकीकरण और व्यावसायिक नियम लागू होते हैं। मॉडल चरण डेटा को रिपोर्टिंग, विश्लेषण या मशीन लर्निंग के लिए समझने योग्य संरचना देता है। अंत में विजुलाइज चरण उपयोगकर्ताओं तक उपयोगी अंतर्दृष्टि पहुंचाने से जुड़ा है। इस ढांचे का लाभ यह है कि निर्णयकर्ता केवल यह नहीं पूछते कि लेक हाउस या मेश बेहतर है, वे पूछते हैं कि किसी खास उपयोग मामले में डेटा विलंबता, संरचना, सुरक्षा, लागत और उपभोक्ता जरूरतों को कौन सा डिजाइन बेहतर संभालेगा। इस प्रकार तुलना तकनीकी शब्दावली से हटकर डेटा की वास्तविक यात्रा और उसके नियंत्रण बिंदुओं तक पहुंचती है। दूसरा, मॉडर्न डेटा वेयरहाउस में लचीले संग्रह और भरोसेमंद बिजनेस इंटेलिजेंस का संयोजन। सेरा मॉडर्न डेटा वेयरहाउस को ऐसी संयुक्त व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसमें डेटा लेक और रिलेशनल डेटा वेयरहाउस दोनों की भूमिकाएं हैं। डेटा लेक कच्चे, असंरचित और अर्ध संरचित डेटा को अपेक्षाकृत लचीले ढंग से रखने की जगह देता है। इसके विपरीत वेयरहाउस साफ, संरचित और क्यूरेटेड डेटा को बिजनेस उपयोगकर्ताओं की रिपोर्टिंग तथा विश्लेषण जरूरतों के लिए उपलब्ध कराता है। यह मॉडल उन संस्थाओं के लिए प्रासंगिक है जिनके पास स्थापित बिजनेस इंटेलिजेंस प्रक्रियाएं हैं, लेकिन जिन्हें लॉग, फाइल, सेंसर या अन्य विविध स्रोतों को भी संभालना है। इसका तर्क सीधा है, हर डेटा को तुरंत कठोर रिपोर्टिंग मॉडल में बदलना ना तो जरूरी है और ना उपयोगी। फिर भी भरोसेमंद डैशबोर्ड और नियामकीय रिपोर्ट के लिए नियंत्रित, परिभाषित और उच्च प्रदर्शन वाली डेटा परत चाहिए। पुस्तक इस संतुलन के साथ उसकी लागत भी समझने को प्रेरित करती है। अलग लेक और वेयरहाउस रखने पर डेटा की प्रतियां, पाइपलाइन और संचालन जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। इसलिए यह चुनाव तब मजबूत होता है जब संगठन को स्पष्ट रूप से स्थिर, संरचित एनालिटिक्स और अलग प्रयोगात्मक या विविध डेटा कार्यभार दोनों चलाने हों। तीसरा, डेटा फैब्रिक का लक्ष्य बिखरे स्रोतों पर एकीकृत पहुंच और सक्रिय गवर्नेंस। डेटा फैब्रिक को समझने के लिए पुस्तक का महत्वपूर्ण संकेत यह है कि समस्या हमेशा अधिक डेटा संग्रहण की नहीं होती। कई बड़े संगठनों में डेटा क्लाउड, ऑन प्रेमिस प्रणालियों, पुराने अनुप्रयोगों और विभागीय उपकरणों में फैला रहता है। ऐसी स्थिति में प्रमुख चुनौती खोज, पहुंच, गुणवत्ता, लाइनेज और नीति नियंत्रण की होती है। डेटा फैब्रिक इन बिखरे परिवेशों को जोड़ने वाली एकीकृत परत और गवर्नेंस क्षमता पर जोर देता है। इसमें मेटाडेटा, स्वचालन और नियम आधारित प्रबंधन की भूमिका विशेष होती है, ताकि उपयोगकर्ता यह जान सके कि कौन सा डेटा उपलब्ध है, उसका अर्थ क्या है, उसे किसने बनाया और उसका उपयोग किन शर्तों पर हो सकता है। सेरा के तुलनात्मक दृष्टिकोण में फैब्रिक केंद्रीय प्रबंधन और जटिल एकीकरण की जरूरत वाले वातावरणों के लिए विचारणीय विकल्प है। हालांकि इसे जादुई समाधान मानना गलत होगा। स्वचालित गवर्नेंस भी विश्वसनीय परिभाषाओं, जिम्मेदार मालिकों और सुरक्षा नीतियों पर निर्भर करती है। फैब्रिक अपनाने से पहले संस्था को यह पहचानना चाहिए कि उसकी असली बाधा डेटा की भौतिक कमी है या अनेक प्रणालियों के बीच भरोसेमंद, नियंत्रित और समय पर पहुंच का अभाव, यह अंतर सही निवेश तय करता है। चौथा, डेटा लेखहाउस से एक ही आधार पर संरचित एनालिटिक्स और एआई कार्यभार। डेटा लेखहाउस का विचार डेटा लेक की किफायती और स्केलेबल संग्रहण क्षमता को वेयरहाउस जैसी प्रबंधन तथा विश्लेषण क्षमताओं के साथ जोड़ता है। पुस्तक के संदर्भ में इसका आकर्षण उन टीमों के लिए है जिन्हें संरचित तालिकाओं तक सीमित नहीं रहना, फिर भी बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए विश्वसनीय डेटा चाहिए। लेखहाउस में एक साझा डेटा आधार पर एसक्यूएल एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और विविध डेटा प्रकारों के उपयोग की संभावना बढ़ती है। इसका व्यावहारिक लाभ डेटा की अनावश्यक प्रतिलिपियों और अलग अलग प्लेटफॉर्मों के बीच जटिल स्थानांतरण को घटाना हो सकता है, लेकिन यह लाभ अपने आप नहीं मिलता। कच्चे डेटा को उपयोगी बनाने के लिए स्कीमा नियंत्रण, गुणवत्ता जांच, एक्सेस अधिकार, कैटलॉग और प्रदर्शन प्रबंधन आवश्यक रहते हैं। अन्यथा लचीला संग्रहण जल्दी ही अव्यवस्थित डेटा लेक का रूप ले सकता है। सेरा की व्यापक तुलना यहाँ उपयोगी सावधानी देती है। लेखहाउस को केवल इसलिए नहीं चुनना चाहिए कि वह आधुनिक लगता है, यह तब उपयुक्त है जब संस्था एकीकृत डेटा आधार पर एनालिटिक्स और एआई कार्यभार चलाना चाहती हो और उसके पास साझा मानकों तथा गवर्नेंस को लगातार संचालित करने की क्षमता भी हो। अंत में, डेटा मेश में तकनीक से अधिक डोमेन स्वामित्व और संगठनात्मक परिवर्तन। डेटा मेश को पुस्तक किसी एक केंद्रीय तकनीकी उत्पाद के बजाय एक वैचारिक और संगठनात्मक ढांचे के रूप में अलग कर दिया है। इसके अंतर्गत बिक्री, निर्माण, आपूर्ति या अन्य व्यावसायिक डोमेन अपने डेटा के लिए अधिक प्रत्यक्ष जिम्मेदारी लेते हैं। वे डेटा को उत्पाद की तरह उपलब्ध कराने, उसकी गुणवत्ता बनाए रखने और दूसरे उपभोक्ताओं के लिए उपयोग योग्य बनाने का उत्तरदायित्व संभालते हैं। यह केंद्रीय डेटा टीम की हर मांग पर निर्भरता और संभावित रुकावट को घटा सकता है। साथ ही डोमेन के लोग अपने डेटा का व्यावसायिक अर्थ बेहतर जानते हैं, इसलिए परिभाषाएं और प्राथमिकताएं अधिक संदर्भपूर्ण हो सकती है। पर यही मॉडल कठिन भी है। अलग टीमों के बीच साझा मानक, इंटरऑपरेबिलिटी, सुरक्षा, पहचान प्रबंधन और डेटा अनुबंधों की जरूरत बढ़ जाती है। यदि डोमेन के पास पर्याप्त इंजीनियरिंग क्षमता, स्पष्ट जवाबदेही और सहयोग की संस्कृति नहीं है तो विकेंद्रीकरण नए साइलो बना सकता है। सेरा का महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मेश अन्य आर्किटेक्चर का स्थानापन्न होना जरूरी नहीं। प्रत्येक डोमेन अपनी जरूरत के अनुसार वेयरहाउस, फैब्रिक या लेखहाउस जैसी तकनीकी व्यवस्था अपना सकता है। इसलिए मेश का चुनाव मुख्यतः संगठन की परिपक्वता और स्वामित्व मॉडल का निर्णय है। निष्कर्ष में, डिसाइफरिंग डेटा आर्किटेक्चर्स उन डेटा आर्किटेक्ट्स, डेटा इंजीनियर्स, एनालिटिक्स लीडर्स और व्यावसायिक प्रबंधकों के लिए सबसे उपयोगी है जिन्हें किसी डेटा प्लेटफॉर्म का चुनाव करना है या अपने मौजूदा प्लेटफॉर्म के अगले चरण को स्पष्ट करना है। यह पुस्तक विशेष रूप से तब मूल्यवान बनती है जब किसी संस्था में एआई की आकांक्षाएं, पुराने स्रोत तंत्र, क्लाउड निवेश, रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और गवर्नेंस की जरूरत एक साथ निर्णय को जटिल बना रही हो। पाठक को किसी एक अंतिम डिजाइन का नुस्खा नहीं मिलता, इसके बदले उसे यह पहचानने का तरीका मिलता है कि डेटा कहाँ है, कौन उसका मालिक है, उसे किस प्रकार बदला जाएगा, कौन उसका उपभोग करेगा और नियंत्रण कैसे कायम रहेगा। यही व्यावहारिक दृष्टि इसका मुख्य लाभ है। समान विषय की कई पुस्तकों या लेखों में किसी एक प्लेटफॉर्म, विक्रेता या लोकप्रिय अवधारणा को श्रेष्ठ बताने की प्रवृत्ति मिलती है। सेरा की पुस्तक की अलग पहचान तुलनात्मक निर्णय ढांचे में है। यह मॉडर्न डेटा वेयरहाउस, डेटा फैब्रिक, डेटा लेखहाउस और डेटा मेश को प्रतिस्पर्धी नारों की तरह नहीं, अलग समस्याओं के उत्तरों की तरह रखती है। साथ ही यह स्वीकार करती है कि वास्तविक कंपनियां अक्सर मिश्रित व्यवस्था अपनाती है। इसलिए पाठक तकनीकी क्षमता के साथ संगठनात्मक परिपक्वता, टीम संरचना और लागू करने की लागत को भी निर्णय का हिस्सा बनाना सीखता है। यह पुस्तक उन लोगों के लिए उपयोगी संदर्भ है जो फैशन के बजाय उपयुक्तता और संचालन क्षमता के आधार पर डेटा आर्किटेक्चर चुनना चाहते हैं। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जेम्स सेला, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।